आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, मैं हूं स्वाति शर्मा और प्रस्तुत हैं रविवार 21 दिसंबर 2025 के मुख्य समाचार। आज ऑस्ट्रेलियाई लोग बोंडाई आतंकी हमले में जिसमें 15 लोग मारे गए थे के एक सप्ताह बाद राष्ट्रीय चिंतन दिवस में भाग ले रहे हैं। आज बोंडाई पवेलियन में भीड़ उमड़ी, जहां नेशनल रिफ्लेक्शन डे के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोग गर्मी की लहर के बीच इकट्ठा हुए। राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ ज्यूइश वुमेन ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अंधकार में प्रकाश का प्रतीक दिखाने के लिए सफेद कपड़े पहनने और एक फूल लाने के लिए आमंत्रित किया गया। देश भर में झंडे आधे झुके हुए हैं और लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे पीड़ितों का सम्मान करने और यहूदी समुदाय के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए अपनी खिड़कियों में मोमबत्ती जलाएं। आज शाम 6:47 पर 1 मिनट का मौन रखा जाएगा, ठीक उसी समय जब गोलीबारी की पहली आवाज गूंजी थी। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने ऑस्ट्रेलिया लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में फेडरल कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों की क्षमता की जांच की घोषणा की है। यह घोषणा बोंडाई बीच में हुई सामूहिक गोलीबारी के बाद प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की अनेक बैठकों के बाद की गई। पूर्व इंटेलिजेंस चीफ डेनिस रिचर्डसन इस जांच का नेतृत्व करेंगे कि क्या इन एजेंसियों के पास लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सही अधिकार और प्रक्रियाएं हैं या नहीं। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस बोंडाई हत्याकांड के जवाब में प्रस्तावित विवादास्पद विरोध और नफरत भाषण सुधारों यानी प्रोटेस्ट एंड हेट स्पीच रिफॉर्म्स का पक्ष ले रहे हैं। राज्य संसद सोमवार को फिर से बुलाई जाएगी ताकि नफरत भाषण कानून पास किए जा सकें, जैसे ग्लोबलाइज द इंटिफादा का नारा, जिसे ऐतिहासिक रूप से इसराइल से मानवाधिकारों को प्राथमिकता देने और कब्जे में फंसे फिलिस्तीनियों को मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कानून आतंकवादी समूहों के झंडों का सार्वजनिक प्रदर्शन भी प्रतिबंधित करेगा और पुलिस को विरोध प्रदर्शनों में चेहरे ढकने वाले आवरण हटाने का अधिक अधिकार देगा। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से आईसिस का झंडा या अन्य आतंकवादी समूहों के प्रतीक दिखाता है, उसे 2 साल तक की जेल, व्यक्तियों के लिए $22,000 का जुर्माना या संगठनों के लिए $110,000 का जुर्माना लागू होगा। हालांकि एक स्वयं घोषित इस्लामिक स्टेट समूह का झंडा बोंडाई कांड के दोनों कथित बंदूकधारियों के वाहन में पाया गया, पर ना तो उनके चेहरे ढके हुए थे और ना ही उन्होंने वह नारा लगाया। घरेलू हिंसा सेवाएं अपने साल के सबसे व्यस्त समय के लिए तैयार हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा मामलों के आंकड़े क्रिसमस और बॉक्सिंग डे पर हिंसा में 78% वृद्धि दिखाते हैं। विक्टोरिया पुलिस के अनुसार दिसंबर 2024 में राज्य भर में रोजाना औसतन 304 पारिवारिक हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें क्रिसमस पर 45% की वृद्धि हुई। विमेंस कम्युनिटी शेल्टर्स, जो हिंसा से बचने वाली महिलाओं और बच्चों को आवास और समर्थन प्रदान करता है, दिसंबर भर में अतिरिक्त सेवाओं और समर्थन प्रदान करने के लिए दान अभियान चला रहा है। नो टू वायलेंस एक संगठन जो ऐसे पुरुषों के साथ काम करता है जो अपने परिवारों में शारीरिक दुर्व्यवहार करते हैं, क्रिकेट के सीजन के दौरान विज्ञापन के माध्यम से पुरुषों तक सीधे पहुंच रहा है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला घरेलू या पारिवारिक हिंसा से प्रभावित है तो 1800 रिस्पेक्ट यानी 1800 737 732 पर कॉल करें या फिर www.1800respect.org.au पर जाएं। आपात स्थिति में 000 पर कॉल करें। विश्व समाचारों में सजायाफ्ता यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के खिलाफ मामलों के लंबे समय से प्रतीक्षित रिकॉर्ड, जिनमें कई पृष्ठ और फोटो सेंसर किए गए हैं, जारी होने के बाद उसके पीड़ितों ने गुस्सा व्यक्त किया है। अधिकारियों द्वारा रिलीज पर कड़ी निगरानी और दस्तावेजों में ब्लैकआउट ने यह संदेह बढ़ा दिया है कि क्या यह प्रकटीकरण उच्च स्तर के कवर अप की साजिश को चुप करा देगा। एपस्टीन की एक अभियुक्त मैरीना लेसर्डा ने CBS को बताया कि वह उन फाइलों का प्रकाशन देखना चाहती हैं, उन नामों के साथ जिन्हें सेंसर करने की आवश्यकता नहीं थी। एक अन्य एपस्टीन सर्वाइवर जेस माइकल्स ने कहा कि उसने अपने विक्टिम स्टेटमेंट और FBI टिपलाइन से किए गए संवाद को खोजने के लिए घंटों बिताए, लेकिन वह नहीं मिल सके। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी सामग्री में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और एपस्टीन के सामाजिक सर्कल के अन्य हाई प्रोफाइल लोगों के फोटो शामिल हैं, जिनमें मिक जैगर और माइकल जैक्सन भी हैं। वहीं पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई है, जिसमें महंगे राज्य उपहारों की सस्ते दाम पर खरीद शामिल थी। खान की कानूनी टीम ने कहा है कि वह उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। हालिया सजा इमरान खान के कानूनी संकटों की एक श्रृंखला में शामिल है, जो अगस्त 2023 से जेल में हैं और वर्तमान में एक अलग भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं। क्रिकेट स्टार से नेता बने खान पर 2022 में पद से हटाए जाने के बाद दर्जनों मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद विरोधी और राज्य के रहस्यों से जुड़े आरोप तक शामिल हैं। उन्होंने सभी मामलों में किसी भी तरह की गलती से इनकार किया है और उनकी पार्टी का कहना है कि ये मामले राजनीतिक प्रेरित हैं। वहीं रुक करें भारत की खबरों का, तो भारत के प्रतियोगिता नियामक यानी कंपटीशन रेगुलेटर ने कहा है कि वह बजट एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ एंटी ट्रस्ट उल्लंघनों के आरोपों की समीक्षा कर रहा है। यह कदम हाल ही में हुए उड़ान रद्द होने के घटनाओं के बाद आया है, जिसने देश भर में हवाई यात्रा को प्रभावित किया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह एयरलाइन, जो भारत के घरेलू बाजार का 60% से अधिक नियंत्रित करती है, ने इस महीने की शुरुआत में लगभग 4,500 उड़ानें रद्द की, जिससे हजारों यात्री फंसे और देश के सबसे बड़े विमानन संकट में से एक उत्पन्न हुआ। रद्दीकरण के दौरान किराए बढ़ गए, जिसके बाद सरकार ने अस्थायी कैप लगाने की घोषणा की। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।